किसी का सवाल यह है कि नाबालिग बच्चों के बारे में क्या हुक्म है, यानी बच्चे मुसलमानों की औलाद जो नाबालिग हो और इंतकाल कर जाए उनके लिए तो जन्नत है, और गैर मुस्लिमों की औलाद जो छोटी हो और नाबालिग हो इंतकाल कर जाए वो भी अक्सर के कौल के मुताबिक और जमहूर के कौल के मुताबिक वो भी जन्नती है, बाकी अल्लाह ताला का मामला है। एक और सवाल है सवाल यह है कि अगर कोई बच्चा बड़ा है, लड़का बड़ा है, और तो घर में घर के अफराद हैं वहाँ पर अगर शॉर्ट्स पहने यानी इस तरह के टखनों से नीचे इजार आती है तो क्या यह जायज़ है? गुनाह तो नहीं है लेकिन अच्छा नहीं है, यानी सतर अगर ढका हुआ है तो गुनाह तो नहीं मिलेगा इस लिहाज से कि सतर ढका हुआ है लेकिन अच्छा नहीं है। ये चीज़ इंसान को, इसलिए कि लिबास का इंसान पर एक असर होता है, हमने शमाइल तिर्मिज़ी जब पढ़ी थी तो उसमें इसकी तफसील आई थी। इंशाअल्लाह रमज़ान में फिर अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो हम शमाइल तिर्मिज़ी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। बहरहाल उसमें ये बात आई थी जहाँ लिबास का तज़किरा आया था कि लिबास उसमें अल्लाह ताला ने एक असर रखा है, हर चीज़ का एक असर होता है, लिबास का असर है। बल्कि हम बच्चों को ये सिखाएं, बच्चों को ये सिखाएं कि देखो जब जुब्बा पहनते हैं वो, उसके नीचे भी जब इज़ार पहने तो वो इज़ार पहने जो यानी आम बाहर पहनने की ना हो, यानी बस वो एक यानी एक होता है नेक लोगों वाली चीज़ इंसान इख्तियार करता है तो नेक लोगों वाली सिफात भी अल्लाह ताला डाल देते हैं। बाज़ों ने वाक़ा बयान किया है तो वाक़े की हद तक हमारे लिए एक सबक है, उसको मैं दलील के तौर पर नहीं वैसे एक वाक़े के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था तफसीर में तो वहाँ पर मैंने नहीं बताया था, इसलिए कि एक तारीख़ी वाक़ा है कि कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब जादूगर आए थे तो उन्होंने लिबास मूसा अलैहिस्सलाम वाला इख्तियार किया था, और बहुत से मुफस्सिरीन ने यहाँ ये भी लिखा है कि चूँकि वो लिबास और ज़ाहरी मुशाबहत मूसा अलैहिस्सलाम की इख्तियार की थी, अल्लाह ताला ने उनको मूसा अलैहिस्सलाम वाली दौलत ईमान जो थी यानी गोया कि उनकी दावत का असर और मूसा अलैहिस्सलाम वाली दावत उन पर का असर हुआ और यानी उनके मुत्तबईन में शामिल हो गए इस ज़ाहरी मुशाबहत की वजह से। बहरहाल वो चाहे वाकया सही हो ना हो, बहरहाल एक सुलहा की मुशाबहत जो है वो एक मुस्तकिल एक ज़रूरी चीज़ है, उसका इंसान की ज़िंदगी पर असर पड़ता है, जायज़ नाजायज़ अपनी जगह वो अलग बात है, लेकिन ज़िंदगी पर असर पड़ता है इंसान के यानी आमाल पर, इंसान की नमाज़ों पर, इंसान की फिर बाद में यानी उलमा के साथ ताल्लुक़ और जोड़ हर चीज़ में असर पड़ता है। ये एक मुशाबहत का अल्लाह ताला ने बहुत कुछ रखा हुआ है, इसीलिए हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो शख्स जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करता है तो उन्हीं में शामिल हो जाता है, ये मुशाबहत का एक बहुत बड़ा एक असर होता है। तो इसलिए कोशिश की जाए कि घर में भी चाहे जुब्बा न पहना हो लेकिन बहरहाल जो सुलहा वाला यानी वो लिबास में वो चीज़ हो जो नेक लोगों वाला तरीक़ा होता है, कोशिश ये की जाए। ज़ाहिर है ज़बरदस्ती करना इस तरह के बच्चे चिढ़ जाएँ वो भी एक मुश्किल काम है, इसलिए कि यहाँ का माहौल ऐसा है यानी उनको यानी ये भी कोशिश करनी है कि वो काबू में रहें, यानी बिल्कुल मुतनफ़िर ना हो जाएँ, लेकिन अगर हो सकता हो आहिस्ता आहिस्ता उनको सुलहा वाले लिबास पर लाया जाए। एक और सवाल है बोन चाइना, ये बोन चाइना वाला मसला पहले पूछा था, हाँ मैंने शायद उस वक्त कोई यकीनी शायद जवाब नहीं दिया था, वो जायज़ है, उसका इस्तेमाल दुरुस्त है, इसलिए कि उसमें हड्डी तो इस्तेमाल होती है लेकिन ऊपर से कोटिंग होती है, खाने पीने की चीज़ों में जब उसको इस्तेमाल करते भी हैं तो उसका यानी हड्डी का कोई असर खाने पीने की चीज़ों में नहीं आता, इस्तेमाल जायज़ है उसका। सवाल यह है कि कुरान में जो आया कल्ब सलीम हासिल करने के लिए क्या असबाब इख्तियार किए जाएँ, क्या सूरत इख्तियार की जाए? हदीस में आता है कि हर चीज़ को साफ़ करने के लिए कोई ना कोई असबाब और ज़राए अल्लाह ताला ने बनाए हैं, और लोगों ने जाए यानी अल्लाह ताला की तरफ से उसकी यानी इंसानों को समझ दी गई, इन लिकुल शयइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ुलूबि ज़िक्रुल्लाह, हर चीज़ को साफ़ करने का कोई आला होता है और दिलों को साफ़ करने का ज़रिया अल्लाह ताला का ज़िक्र है। तो ये आदत कर लें, तस्बीहात کچھ وقت، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو تسبیحات، سبحان اللہ والحمد للہ کی تسبیحات ہیں، استغفار کی، درود شریف کی، انسان جب معمول بنا لیتا ہے تو عادت یہ ہو جاتی ہے، اچھا معمول کے طور پر تو پڑھ ہی رہے تھے، چلو چلتے پھرتے وقت خالی ہے چلو پڑھ لیتے ہیں، چلتے پھرتے انسان بس یعنی پڑھنے کی عادت بنا لے، تسبیحات کی عادت بنا لے، اللہ کو یاد رکھنے کی عادت بنا لے، ایک چیز، ایک ہی نہیں، ایک چیز یہ ہو گئی جس سے دل انسان کا گندگیوں سے پاک ہوتا ہے۔ جب اچھی چیز دل میں ڈالتے رہیں گے، کوئی برتن ہے اس میں گندگی بھری ہوئی ہے اور پانی ڈالتے رہیں گے تو کیا ہوتا ہے، گندگی نکلتی رہے گی، اچھا پانی آتا رہے گا، تو اسی طرح دل کو اچھی چیزوں سے بھرتے رہیں گے تو اس سے گندگیاں نکلتی رہیں گی، یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ دیکھیں اپنی زندگی میں، انسان یہ دیکھے کہ میں کہاں پر غلطی کر رہا ہوں یا غلطی کر رہی ہوں، یہ زیادہ اہم چیز ہے، دونوں چیزیں اہم ہیں، لیکن عام طور پہ لوگ پہلی چیز پھر بھی کر لیتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے، دوسری چیز نہیں کرتے، اپنے غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کسی کے خلاف دشمنی ہے کسی وجہ سے، چاہے اس نے ہمیں نقصان پہنچایا تھا، کسی نے ہمیں کچھ ہمارے ساتھ برائی کی تھی، اب اس سے دل میں نفرت، اس کے خلاف کینہ، یہ انسان کے دل کو خراب کر دیتا ہے۔ ہر ایک سے انسان یہ سوچے کہ جس نے اگر کسی نے کچھ کیا بھی ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بہرحال اپنے دل کو صاف رکھا جائے، دل کو صاف رکھا جائے، کسی سے بغض اور کینہ نہ ہو، لوگوں سے محبت کا معاملہ ہو، کسی سے عداوت نہ ہو، اپنے بارے میں یعنی برائی اور یعنی جو چیزیں، یہی چیز ہے، انسان یہ چیزیں پڑھے تاکہ محسوس احساس کرے، اپنے بارے میں کوشش کرے، معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کون سی چیز میرے اندر بری ہے، میرے دل میں کون سا برا احساس آ رہا ہے جس کو مجھے ختم کرنے کی ضرورت ہے، کبر ہے اور یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال ایک ظاہری کرنے کی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو پڑھنے کا کچھ نہ کچھ عادی بنائے، اور دوسری چیز کوشش کرے اپنی غلطیاں معلوم کرنے کی، اپنی غلطیاں معلوم کرنے کی کوشش کرے اور ان کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ عید یا رمضان کے موقع پر وہ جو کارڈ دیے جاتے ہیں، یہ کارڈ وغیرہ کے سسٹم جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کارڈ وغیرہ دینے کے سسٹم کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ کارڈ ہوتے ہیں یہ بزنس ہے، اور ظاہر چلا ہے غیر مسلموں سے لیکن مسلمانوں میں بھی آیا، اب ہوتا ہے کہ انسان خط لکھنا چاہتا نہیں، کاغذ پہ خط لکھ دیتا اس کی بجائے کارڈ بھیج دیتا ہے، اور کسی کو اس کی وجہ سے بزنس کا فائدہ پہنچا رہا ہے، اس طرح کے یعنی یہ اگر کارڈ وغیرہ کا سلسلہ ہمارے ملکوں میں اگر ختم ہو جاتا، مسلمانوں میں ختم ہو جاتا تو بہت بڑی رقم غربا میں جا سکتی تھی۔ یہ عید کارڈ ہوتے ہیں، شادی کارڈ ہوتے ہیں، یہ فضول ہے، فضول ہے، اسراف ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایک ہی اس میں کسی نے اتنے سارے سوالات کر لیے، اس میں سوال یہ ہے کہ کسی کو جمعہ مبارک کہہ سکتے ہیں؟ جمعہ مبارک یہ بھی کوئی نہ صحابہ کے دور میں ہے نہ تابعین کے دور میں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو مسنون مستحب کہیں، جو چیز مسنون مستحب نہیں ہوتی نہ کرنا اچھا ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں ہم اس کو بدعت نہیں کہتے، ناجائز نہیں کہتے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن نہ کرنا اچھا ہے، اس لیے کہ یہی چیزیں آگے جا کر پھر خامخواہ کے ایک رواج بن جاتی ہیں، ایک نئی چیز بن گئی جو اب تک ہمارے صلحاء میں، نیک لوگوں میں، مشائخ میں ایک چیز نہیں رہی، وہ چیز ایک نئی کیوں شروع کی جائے؟ پہلے ہی لوگوں میں بہت سی چیزیں ہیں اور نئی ان کو ہی ختم کرنا ہے، اب نئی چیز کیوں شروع، پتہ نہیں آج کل اب قریبی زمانے میں یہ چیز زیادہ شروع ہوئی ہے، جمعہ مبارک جمعہ مبارک، یہ کوئی ثابت چیز نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے کہ جنہوں نے جائز کہا وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اچھا ہے کہ انسان جو چیز ثابت نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، وہ چیزیں نہ کرے۔ سوال ہے بچوں کے ساتھ تعلیم میں کون سی کتاب پڑھی جائے؟ بچوں کی تعلیم کے لیے الگ الگ، اس پر ہے کہ انگریزی ہے، اردو ہے، یہ دیکھا جائے کہ واقعات کی کتابیں، قصوں وغیرہ کی کتابیں، کہانیاں، یہ بچوں کے لیے سب سے فائدہ کی چیز ہے، اس لیے کہ وہ عام طور پہ ان کو باتیں زیادہ ادھر ادھر کی اور उन चीज़ों से उनको मुनासिबत नहीं होती, किस्से और कहानियाँ वो शौक़ से सुनते हैं। ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत काम की होती है कि कहानियों की और किस्सों की, ये छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी कहानियों की किताबें मिलती हैं, इस्लामी किस्से मिलते हैं, वाक़यात की किताबें मिलती हैं, और बड़ों के लिए भी मिलते हैं, उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। वो उसको मालूम किया जा सकता है कि कौन कौन सी मुख्तलिफ़ किताबें हैं, लेकिन बहरहाल मैं उनवान बता रहा हूँ कि वाक़यात सहाबा की, हिकायत सहाबा है। हयात सहाबा तो खैर बहुत तवील है, वो बच्चों के काम की नहीं, लेकिन हिकायत सहाबा है, या इसी तरह यानी और बुज़ुर्गों के वाक़यात, मशायख के वाक़यात, और इस तरह की जो भी वाक़यात और इस तरह की कहानियाँ, ये बच्चों को इससे दिलचस्पी होती है। मुझे याद है अपने बचपन में एक किताब थी, मुझे तो उर्दू पढ़ने आती नहीं थी, हिफ्ज़ कर लिया था और अभी हिफ्ज़ ख़त्म ही हुआ था मेरा, और मेरा दौर चल रहा था उस वक्त। मुझे याद है उम्र तकरीबन 10-11 कुछ साल होगी, तो मुझे बड़ा शौक़ था। रात को वालिदा मुझे रोज़ाना रात को सुनाया करती थी एक किताब, मुझे अभी तक ना याद है, और बाद में किताब देखी। उस वक्त तो खैर पढ़ने से यानी मुझे बस ये था कि अच्छा, चूँकि मुझे पढ़ने नहीं आता, मुझे रोज़ाना कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें से सुनना होता था। वो किताब मिन ज़ुलुमात इला नूर, मिन ज़ुलुमात इला नूर किताब है, मुझे तो बहुत पसंद आई थी उस उम्र में, 10-11 साल की उम्र में। और रोज़ाना शौक़ होता था कि अच्छा आज आगे पढ़ना है, आगे आगे पढ़ना है, और ज़बरदस्ती में किताब लेकर जाता था और वालिदा मुझे सुनाती थी। उनको तो याद नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है वो पूरा उस वक्त का मुझे मंज़र कि वो सुनाया करती थी। और उसमें क्या था, ये एक हिंदू घराने के कोई शख्स थे जो अपने जो मुसलमान हुए थे, और उन्होंने अपने मुसलमान होने की पूरी तफसील उसमें बयान की है कि क्या था, मैं कैसे घराने में रहता था, फिर क्या हुआ और कैसे मैं इस्लाम में दाखिल हुआ, मुझे क्या मुशक्क़तें पेश आईं, किन कुर्बानियों से मुझे गुजरना पड़ा, ये सब चीज़ें उसमें तफसील के साथ थीं। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आखिर का हिस्सा तो खैर उसके बाद फिर छोड़ दिया था, इसलिए कि वो उनके फिर बाद की ज़िंदगी से मुताल्लिक था, लेकिन शुरू का जो हिस्सा था वो ख़ास तौर पे तकरीबन 2/3 हिस्सा किताब का, वो बड़ा दिलचस्प था। वही वाक़यात किस्सा था एक शख्स की कि वो ख़ुद बयान कर रहे हैं कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ, फिर मुझे इस तरह सज़ा दी गई, फिर मेरे साथ ये ज़्यादतियाँ की गई और मैं फिर भी इस्लाम पर जमा रहा। इस तरह के वाक़यात से इंसान को एक अच्छा भी लगता है और दीन के साथ एक कुव्वत भी इंसान महसूस करता है। अच्छा, एक और सवाल है, नमाज जनाजा मोहल्ले के इमाम पढ़ाते हैं, नमाज जनाजा मोहल्ले के इमाम पढ़ाते हैं, क्या बेटे को वसीयत की जा सकती है कि वह नमाज जनाजा पढ़ाए? हाँ, की जा सकती है बिल्कुल। बस इतना है कि अगर किसी जगह यही दस्तूर है कि इमाम ही पढ़ाते हैं तो उनके इनसे इजाज़त ले ली जाए, वो खुशी से इजाज़त दें तो ठीक है, वरना किसी को नाराज़ ना किया जाए उसके लिए, वरना वसीयत की जा सकती है, बेटे का हक है कि वह नमाज़ पढ़ाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखे हुए खतूत क्या अब तक महफूज हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखे हुए, लिखवाए हुए खतूत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद नहीं लिखते थे लेकिन लिखवाते थे, वो खतूत महफूज हैं। और यानी असल खतूत वो तो कहते हैं म्यूज़ियम में बाज़ जगहों पर हैं, ज़ाहिर है उसके बारे में यकीनन हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि उस ज़माने के बहुत पुराने, लेकिन बाज़ म्यूज़ियम में महफूज हैं, उनकी तस्वीरें वगैरह भी मिलती हैं। लेकिन उसकी जो इबारत थी वो हदीसों में है, वो तो मिश्कात शरीफ में और हदीस की किताबों में लिखे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाने हिरक़ल अज़ीम रोम सलामुन अला मन इत्तबअ अल हुदा, वो तो यानी पूरे खतूत महफूज हैं, शमाइल तिरमिज़ी में भी उसका कुछ हिस्सा आ जाता है, और यानी सहाय सित्ता में उसके तस्करा मिल जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बादशाह को ख़त लिखा था, क्या लिखा था। सीरत की किताबों में और ज़्यादा उसकी तफसीरात मिल जाती हैं, महफूज है सब, लेकिन असल खतूत वो बाज़ जगहों पर हैं कहते हैं, और यानी उसकी तस्वीरें वगैरह देखी हैं और बाद म्यूज़ियमों में उसको रखा हुआ है। मिसवाक टूथब्रश, मुझे नहीं पता कि मिसवाक टूथब्रश कौन सा है। मिसवाक टूथब्रश मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। तो बहरहाल मिसवाक तो मिसवाक है जो कि लकड़ी से होती है, टूथब्रश वो लकड़ी से नहीं होता, मुझे नहीं पता कि ये दरमियान की चीज़ कौन सी है। बहरहाल अगर लकड़ी है तो फिर उससे सुन्नत अदा हो जाएगी, लेकिन असल तो मिसवाक में यह है कि वो असल दरख्त की जो लकड़ी होती है उसको इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो पीरू के दरख्त जो आमतौर से होता था वो हो या कोई और हो, बहरहाल ये असल लकड़ी का इस्तेमाल करना ये है सुन्नत जिससे फजीलत हासिल होती है। अच्छा अब मैं जाता हूँ उसमें, अगर वहाँ किसी का सवाल है। 27 रजब का रोज़ा रखना या जागना के बारे में कुछ रोशनी डालें। हाँ ज़रूर, ये ज़रूर काम की चीज़ है। हमने शायद 2 हफ्ते पहले जुमेरात की रात को जब दुआ का वक्त था उस वक्त इसका तذکرہ किया था किसी के सवाल में कि रजब में कोई ख़ास अमल हो। बहरहाल ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि या रजब में कोई ख़ास अमल नहीं। हाँ बस ये है कि शुरू रजब में जो दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायतों में मनकूल है कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमदान, के अल्लाह रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा, के हम उसके लिए गोया कि एक इबादत के लिए अपने आप को तैयार करें, सेहत वगैरह के लिहाज से भी सही रहें और इबादत में भी अपने आप को लगाएं। बारिक लना फ़ी रजब व शाबान और व बल्लिगना रमदान, ए अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, इतनी हमें उम्र दे कि रमज़ान का महीना मिल जाए और उसकी बरक़ात हम हासिल कर सकें। ये दुआ तो ठीक है, उसके अलावा कोई ख़ास अमल रजब का नहीं है। हाँ रजब का महीना जो है वो मुहर्रम यानी हुरमत वाला महीना है, शहरुल्लाइल मुहर्रम हुरमत वाला महीना कहलाता है। शुरू इस्लाम में इसमें जंग करना मना था, हराम था, फिर जंग करने की इजाज़त तो मिल गई थी बाद में, लेकिन है हुरमत वाला महीना जिसको कुरान ने कहा कि 12 महीने हैं उनमें से 4 हुरमत वाले हैं, 4 महीने ऐसे हैं जिनका एहतराम ज़्यादा है, तो रजब भी उसमें आ जाता है। ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने साल के वो हैं जिसको कुरान ने कहा इन इद्दत अश्शुहूर इंद अल्लाह 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़ अस्समावाति वल अर्ध मिन्हा अरबातुन हुरम, मिन्हा अरबातुन हुरम, 4 हुरमत वाले महीने हैं, तो रजब है हुरमत वाला महीना। लेकिन इसका मतलब यह है कि इसमें इंसान थोड़ा ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ ध्यान देने का एहतमाम करे और इबादत का एहतमाम करे, लेकिन किसी ख़ास अमल को इस दिन या उसकी किसी ख़ास तारीख़ में फजीलत का समझना यह दुरुस्त नहीं है। 27 रजब का रोज़ा रखना बिदअत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में भी बाज़ों ने शुरू कर दिया था, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला रोज़ा तोड़वाया था उनसे, तो बहरहाल ये बात साबित हो चुकी है कदीम दौर से सहाबा के दौर से कि रजब की 27 को कोई ख़ास इबादत करना, रात जागना या दिन में रोज़ा रखना ये सही नहीं है, बिदअत है, इससे बचना चाहिए।